नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
The topic for the Governing Council meeting.
गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी स्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया के दौरे पर भी रहेंगे। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीकों की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला होगा। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी शर्मा ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।